सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरते भारत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। 6.5% की GDP वृद्धि दर, रिकॉर्ड निर्यात और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी ने भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। आज इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
धन्यवाद, नमस्कार।
शिशिर जी, आप भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में कैसे परिभाषित करना चाहेंगे?
अगर पिछले दो रिपोर्ट को अगर आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें या विश्व बैंक की बात करें, और साथ ही साथ आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी रिपोर्ट को ले लीजिए, इन तीन रिपोर्ट में एक बात सामने आई कि विश्व की आर्थिकी की विकास दर जो है उसमें गिरावट आई है, लेकिन भारत की विकास दर में उस तरीके की गिरावट देखने को नहीं मिली। स्थिति ये भी है कि कई संस्थाओं ने जो है उसमें सुधार भी किया। जहां पहले हम 6.2 की बात कर रहे थे, 6.3 की बात कर रहे थे, अब 6.5% तक इस कारोबारी साल यानी कि 2025-26 तक पहुंचने का अनुमान है। रिजर्व बैंक ने भी अपने अनुमान को 6.5-6.6 के करीब में ही रखा है। अब इन सभी के पीछे क्या कारण है, खासतौर पर जब वैश्विक परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, जिस तरह की अनिश्चितताएं हैं, उन अनिश्चितताओं के बीच में हम अगर तेजी से विकसित करने वाले देश हैं तो उसके लिए कारण क्या है? सबसे बड़ा जो कारण है कि आपकी नीतियों में अस्थायित्व है, जिससे कि आर्थिकी को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। पिछले अगर 10 साल 11 साल में आर्थिक नीतियों की बात करें, चाहे वो मेक इन इंडिया हो या फिर आप PLI स्कीम की बात कर लीजिए या फिर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कर लीजिए, इन सभी नीतियों का असर ये हुआ है कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में विकास के लिए रास्ता और बेहतर हो पाया है। एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज यानी कि पारंपरिक उद्योग अगर आगे बढ़े तो स्टार्टअप्स की संख्या भी आपके यहाँ काफी तेजी से बढ़ी है। तो इन सब का मिला जुला स्वरूप ये है कि वैश्विक परिस्थितियां अनिश्चितता के दौर में भले ही हो, लेकिन आपके विकास के लिए जो जरूरी साधन है, जो जरूरी माहौल है, वातावरण है, वो तैयार है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि घरेलू मांग हमारी इतनी बड़ी है जो कि वैश्विक मांग में कमी की स्थिति में उद्योग को सहारा देने के लिए काफी होता है। और यही सब कारण है जिसकी वजह से हम आज दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले देश में हैं।
आपने लगभग सभी बिंदुओं का जिक्र कर दिया है, तो हम एक एक करके अब उन पर चर्चा करते हैं। भारत की 6.5% जो GDP वृद्धि दर है, वो मुख्य रूप से किन कारकों पर आधारित है?
देखिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तीन क्षेत्रों में है, कृषि है, सेवा क्षेत्र है और आपका उद्योग क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र की स्थिति जो है उसमें खास तौर पे दो क्षेत्रों के ऊपर आप अगर गौर करेंगे, जिसको एक है कंस्ट्रक्शन यानी कि विनिर्माण का क्षेत्र है और दूसरा जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है। कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि विनिर्माण का क्षेत्र 400 तरह की आर्थिक गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से प्रोत्साहन देता है। तो अगर आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, निर्माण में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो उसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलता है। दूसरी ओर आपने एक और चीज गौर किया होगा कि पिछले कुछ सालों से लगातार एक ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मॉनसून हमारा सामान्य है, और जिसका फायदा कृषि को मिला है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिला है। तो कृषि और सेवा क्षेत्र में खास तौर पे अगर मैं बात करूं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, वहां पर एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दूसरी ओर अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं, वहां पर हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में उस तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और जैसे मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लूं, वहां पर थोड़ी स्थिति अच्छी देखने को मिली है। तो इन सब का मिला जुला योगदान यह है कि आपके लिए अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है।
जैसा आपने बताया कि बाजार में मांग बनी हुई है, उससे भी काफी फायदा हुआ है, तो सच ये है कि जिस बड़ी आबादी पर हमेशा उंगली उठाई जाती है, ये बड़ी मांग भी शायद उसी की वजह से है। हमारी इतनी बड़ी आबादी है कि अगर जरा भी मांग हो तो वो काफी बड़ी मांग होती है बाजार में। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पूरे जो सारी ताकतें मिलकर काम कर रही हैं, उससे विश्व में जो अभी आर्थिक अनिश्चितता है और उसके बीच में भारत ने इन तमाम आर्थिक शक्तियों के साथ अपनी जो आर्थिक ताकत है इसके पास, उसके जरिए किस तरह से स्थिरता बनाए रखी है।
देखिए, आर्थिकी में अगर हम कहें कि चार तरह के डी का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक आपका डी जो है आपका डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र है, दूसरा जो डी है वो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तीसरा जो डी है वो आपका डिमांड है, चौथा जो डी है वो डाइवर्सिफाइड मार्केट है। अब इसमें एक और डी जोड़ दीजिए, वो है डिजिटल इकोनॉमी। तो ये जो पांच डी है, इन पांच डी के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में है। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, उसका सबसे बड़ा आर्थिक को क्या होता है, नीतियों में स्थायित्व होती है। कोई भी निवेशक चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, वो कहीं पर भी पैसा लगाता है तो वो देखता है कि नीतियों में अस्थायित्व है कि नहीं है। दूसरा क्या होता है कि बाजार कहां है। तो जब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, जहां पे हम कहते हैं कि 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, तो आपके पास एक बड़ा बाजार उपलब्ध होता है। तीसरा जो हम लोग कहते हैं कि डिमांड तो है, मांग तो आ रही है क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी आबादी उपलब्ध है। चौथा डाइवर्सिफाइड मार्केट, क्योंकि तमाम तरह के जो उत्पादन करने वाले हैं उनके लिए मौके हैं। डाइवर्सिफाइड यानी कि विविधीकरण, कहते हैं ना कि कोस कोस पर यहां पर बोलियां बदल जाती हैं, पानी बदल जाता है, जरूरतें बदल जाती हैं। तो ऐसे में एक उत्पादक के लिए इससे बेहतर मार्केट क्या हो सकता है। और सबसे अहम जो पांचवा जो डी है यानी कि डिजिटल जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसने लेन देन को और काफी सुगम कर दिया और काफी आसान कर दिया है। इन सबका नतीजा क्या हुआ है कि आप आर्थिकी में एक सुचक्र की स्थिति है। सुचक्र यानी कि हम लोग वर्चुअस साइकिल जिसको हम लोग कहते हैं, और यही वर्चुअस साइकिल हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद कर रही है।
यानी बाजार की रगों में जो पैसा है दौड़ रहा है। और अगर हम देखें मुद्रा स्फीति दर, जो मई का आंकड़ा था 2.82%, फरवरी 2019 के बाद सबसे कम है, और अगला आंकड़ा जल्दी ही आने वाला है और उम्मीद है कि शायद बेहतर आएगा। इसका असर आम नागरिकों पर और व्यापार जगत पर क्या पड़ा है? और इसके साथ ही जो एक और बात कहना चाहता था मैं कि रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ महीनों में दरों में 1% तक की कटौती की है, इससे भी पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है?
पहला जो अगर आप मुद्रा स्फीति यानी कि महंगाई दर की बात करें, मई के महीने में आपने बिल्कुल सही कहा 2.82% था। इसका महत्व इस तरीके से आप समझिए कि हमारा जो टारगेटेड इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई दर का हमारा लक्ष्य 2-6% के बीच का है, और उसके बीच का जो मध्यवर्ती दर है जिसको हम लोग 4% का कहते हैं, 4 महीने से हमारी महंगाई दर जो है वो 4% के नीचे है। जो हम जून के आंकड़े जो कि सोमवार को आने की बात है, अगर वो 2.8 से नीचे होती तो लगातार दूसरा महीना होगा जब ये 3% से कम है। अब जाहिर सी बात है कि जब आप महंगाई दर कम है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक पुरानी कहावत है कि महंगाई गरीबों के लिए कर है। एक आदमी भले कर ना दे लेकिन महंगाई दर ज्यादा हो तो उसको अप्रत्यक्ष तौर पे कर देना ही पड़ता है। तो जब महंगाई की दर कम होती है तो आपके लिए, लोगों के लिए सामान और सेवाओं की लागत में कमी करना संभव हो पाता है। और इसी का असर यह है, जैसा कि आपने जिक्र किया, कि मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी, अप्रैल और जून में 3 किस्तों में कुल मिलाकर के 1% की नीतिगत ब्याज दर में कटौती की। अब 1% की ब्याज दर में कटौती का फायदा क्या है? एक फायदा तो ये हुआ आपको कि बाजार में आपके लिए कर्ज लेना सस्ता हुआ, यानी कि आप उपभोग बढ़ावा देंगे। कुछ लोगों को ये शिकायत जरूर हो सकती है कि अगर वो नीतिगत ब्याज दर कम हो गई है तो उनके जमा पर ब्याज दरें घट गई है। ये एक शिकायत वाजिब शिकायत है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपके लिए सामान खरीदना भी सस्ता है। तो वहां पर जो एक कहते ना कि वहां पे जो आपको थोड़ा घाटा एक उठा रहा है, वो आप यहाँ पे खपत में उसका जो है एक फायदा देख सकते हैं। उत्पादक के लिए जो है वो कर्ज लेना आसान हो पाया सस्ते दर पर, और वो इसका फायदा जो है वो उपभोक्ताओं को देना चाहेगा। तो महंगाई दर का कम होना सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं होती है, इसका जमीनी असर पर क्या असर होता है उपभोग के मामले में, उत्पादन के मामले में, और पूरे बाजार में मांग को बेहतर बनाने में बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर एक बात आपको याद रखना जरूरी है कि ग्रामीण इलाके में मांग की स्थिति तो बेहतर है, शहरी इलाकों में मांग थोड़ा कम है। ये जो ब्याज दरों में कटौती की गई है, इससे ये उम्मीद है कि शहरी इलाकों में भी मांग की स्थिति और बेहतर होगी, और इसका पूरा फायदा उत्पादक को मिलेगा, रोजगार के ज्यादा मौके बनेंगे, लोगों के हाथ में अतिरिक्त पैसे आएंगे, और ये अर्थव्यवस्था को और बेहतर स्थिति में पहुंचा सकता है।
जी, अभी आपने रोजगार की बात की है, तो रोजगार के मोर्चे पर अभी हमारे देश की उपलब्धियां कैसी हैं?
अगर आंकड़े की बात करूं तो जो पिछला आंकड़ा था वहां पर निश्चित तौर पर बेरोजगारी की दर जो थी वो थोड़ी बढ़ी हुई थी, 5.6% थी, लेकिन वो एक सीजनल था। सीजनल जिसको कहते हैं ना कि अब रबी की बुआई हो चुकी थी और खरीफ की फसल जो है वो बाजार में आने को तैयार थी, तो वहां पर एक बड़ी आबादी जो है वो काम की स्थिति में नहीं थी, और वो जिसे कहा जाए कि एक ट्रांजिट पीरियड था। 5.6 को लेकर के हम बहुत ज्यादा निराश हो जाए वो सही नहीं है, एक ट्रांजिशनल है। जहां तक रोजगार की बात है, अभी सरकार ने एक नई योजना मंजूर की है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि ELI है। और ये जो ELI स्कीम है, इसका मकसद ये है कि पहली बार नौकरी पाने वाले और जो लोग नौकरी में हैं वो लंबे समय तक तक बने रहें उसका फायदा कैसे उनको दिया जाए। तो पहली बार नौकरी पाने के लिए बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी एक आंकड़ा जो है वो ईपीएफओ के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर पता चला कि 48% लोग 6 महीने के भीतर नौकरी छोड़ रहे हैं, पहली बार नौकरी पाने वाले। अब उनको नौकरी में बनाए रखने के लिए एक प्रोत्साहन देने की जरूरत है, क्योंकि देखिए ये एक ना catch-22 सिचुएशन है। आप अगर नौकरी छोड़ते हैं पहले 6 महीने में तो आपका बायोडाटा कमजोर होता है। जब आप नई नौकरी के लिए जाते हैं तो आपसे एम्प्लॉयर पूछता है कि आपके पास अनुभव क्या है, आप कहते हैं अनुभव तो मेरे पास इतना ही है, और उसका असर आपके कौशल्य पे, आपके प्रशिक्षण पे पड़ता है। लेकिन अगर आपको प्रोत्साहन दिया जाए कि आप लंबे समय तक टिका रहे, तो इसमें क्या फर्स्ट टाइमर को 1 साल में 1 महीने के बराबर की तनख्वाह एक प्रोत्साहन के तौर पर आपको दी जा रही है कि 15,000 रुपए तक आपकी तनख्वाह, 7,500 रुपया पहले 6 महीने के बाद, फिर 7,500 रुपया अगले 6 महीने के बाद। तो इसका फायदा क्या होगा कि जो लोग नौकरी में आएंगे ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए उनके पास एक इंसेंटिव होगा, और ये इंसेंटिव रोजगार की स्थिति बेहतर करेगा। दूसरी ओर जो पार्ट बी है इस स्कीम का, जहां पर तीसरे और चौथे साल में जो मैन्युफैक्चरिंग में बने रहते हैं उनके लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की बात है, तो उनके लिए और कौशल बेहतर हो सकता है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसकी कोशिश ये है कि कौशल्य और रोजगार, मतलब एक कोई ना बढ़े, दोनों बढ़े, दोनों के लिए बेहतर स्थिति बन सके।
और भारत के निर्यात में जो रिकॉर्ड वृद्धि हुई है उसमें कौन से क्षेत्र सबसे अधिक योगदान कर रहे हैं?
निर्यात में आप देखेंगे तो दो चीजें हम लोग देखते हैं, एक वस्तु हो गई, एक सेवाएं हो गई। तो सेवाओं के मामले में स्थिति हमारी बेहतर है, वस्तु के मामले में जरूर थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं है, और उसके पीछे कारण बहुत स्पष्ट है। अगर आप देखें कि दुनिया के अलग अलग देशों में आर्थिकी वहां पर जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, वहां पर मांग थोड़ा कम है, तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ा है। लेकिन आईटी और आईटीएस सर्विस जो है हमारे लिए बेहतर स्थिति में है, और इसके अलावा कुछ और क्षेत्र हैं जहां पर हमने सर्विसेज के मामले में अच्छी चीजें देखी हैं, या अगर आप कहेंगे कि पेट्रोल प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है वो भी काफी अच्छा हुआ है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं हमारे निर्यात के लिए, और ये चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आपका निर्यात बढ़ता है तो आपके पास एक स्थायी विदेशी पूंजी आती है जो आपकी आर्थिकी को समय समय पर मदद करने में अहम भूमिका निभाती है।
बढ़ते विदेशी निवेश और आईपीओ गतिविधियों को भारत के लिए आप किस तरह की उपलब्धि मानते हैं?
अगर मैं विदेशी निवेश की बात करूं, जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो हम लोग 5 D देखते हैं, उसमें से जो पहला D का हमने जिक्र किया था डेमोक्रेसी का, और डेमोक्रेसी से जो है एक नीतियों में स्थायित्व और नीतियों में स्थिरता जो देखने को मिलती है, ये देशी विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए काफी जरूरी होता है। और एक बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक जो है वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनको दूसरे बाजार की तुलना में यहाँ पर बेहतर मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। अब दूसरी ओर अगर आप आईपीओ देखें, हर दिन आपको एक न एक आईपीओ का विज्ञापन जो है आपको अखबार पर देखने को जरूर मिलता है, टीवी चैनल्स पर जरूर देखने को मिलता है। कंपनियां बाजार से पैसे उठा रही हैं, और कंपनियां बाजार से पैसे इसलिए नहीं उठा रही कि उनको पैसा जमा करके रखना है, बल्कि वो इसलिए उठा रही है ताकि उनको अपने कारोबार का विस्तार करना है। और दूसरी ओर हमारे देश में जो निवेशकों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ी है, पूंजी बाजार से उनको फायदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहां पर आ रहे हैं, और ये कंपनियों के लिए एक मौका है कि इन निवेशकों के बीच के जो लगन है उसको हम कैसे भुना सके। हाँ, इन निवेशकों को एक सावधानी बरतनी होगी कि अगर वो शेयर बाजार में आते हैं तो आईपीओ एफपीओ तक तो ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से बचें, वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा।
शशिर जी, आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की यात्रा पर आपने बहुत बहुमूल्य जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरते भारत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में